जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, आवाज बढ़ाना, यमुना तीरावन चारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मौदीरये, नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। मम ज्ञानति निरन्तरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपाद कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवान्तचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 11। प्रसादितः सत्यवत्या एवं भूरीति भार्गवः अथ तर्हि भवेत् पुत्रो जमदग्निस्ततो अभवत्। प्रसादितः सत्यवत्या नेवं भूरीति भार्गवः अथ तर्हि भवेत् पुत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। धन्यवाद सर। शब्दार्थ प्रसादितः शांत किया गया, सत्यवत्या सत्यवती द्वारा, मां नहीं एवं इस प्रकार। हो जाए इति इस प्रकार भार्गवः ऋषिः अथ यदि तुम्हारा पुत्र ऐसा न हुआ तरही तो भवे होगा पुत्र पोता जमदग्नि ततः तत्पश्चात अभवा उत्पन्न हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों से ऋषि को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय की तरह भयंकर न हो। ऋषिक मुनि ने उत्तर दिया तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुण वाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र रूप में जमदग्नि का जन्म हुआ। तात्पर्य ऋषि ऋचिक अत्यधिक कुपित थे किंतु सत्यवती ने उन्हें किसी तरह मनाया और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। यहां इसका संकेत है कि जमद अग्नि के पुत्र रूप में परशुराम का जन्म होगा। बस दो लाइन लिखे होता पार सभी वैष्णव चरणों में सादर दंडवत करते हुए श्रीमद् भागवत जो परम हंस संहिता है सार असार विवेकी वैष्णव संसारी असत कथा जिसको भागवत में कुकथा मतिग्निम जो मति को हरण करने वाली है ऐसे विषय वार्ता को त्याग कर भक्तिवर्धक कृष्ण प्रेम प्रदायक श्रीमद् भागवत हरि कथा रस अमृत का आस्वादन करते हैं। काक तीर्थ में भ्रमण नहीं करते। तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा हंस प्रकृति के वैष्णव जो सार सार शीर पय को अलग करना जानते हैं वे इसको ग्रहण करते हैं। प्रारंभ में ही नैमिषारण्य में सूत जी को शौनक जी ने कहा है इस विषय को तत्कथ्यताम महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रय हे महाभाग्यवान अगर कृष्ण के विषय में कथा हो तत्कथ्यताम उसको कहिए अथवा तत्पदाम भोजम मकरान लिहाम सताम अथवा उस कृष्ण के चरण कमल में अनुराग रखने वाले वैष्णव के चरित्र हो तो उसको कहिए अन्यथा किम असद आलापे आयुर सद अव्ययम पर नहीं तो फिर इसके अलावा जो अन्य विषय है उसमें हमारे मनुष्य जीवन के कीमती क्षणों को क्यों व्यय किया जाए। वैष्णव ये भागवत का नवम स्कंद ईशान कथा के अंतर्गत है। स्वयं सुखदेव जी ने भागवत 2:10:5 में कहा है अवतारानुचरितम हरेश्या अनुवर्तिताम सताम ईश कथा प्रोक्तो नानाख्यानम ब्रीहिता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले सताम तत्कथाम ईशानुकथाम भागवत में उन सूर्यवंश और चंद्रवंश के पवित्र राजाओं का इतिहास है, जिसका श्रवण कीर्तन हमें त्रिगुणातीत बनाता है, हमारे हृदय को प्रेम भक्ति से भरता है। इस प्रसंग, इस श्लोक में हम प्रवेश करें उसके पूर्व एक आश्चर्यमय बात यह है कि आप भागवत के प्रारंभ में जाए तो सुखदेव जी का आगमन होने से पूर्व सूत जी ने कहा कि विश्व ब्रह्मांड से, त्रिभुवन से देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि पधारे, और उसमें वो नाम भी गिनाते हैं कुछ कुछ के, मुख्य के, सबके तो कहां गिनाएंगे। तो उसमें नाम गिनाते वक्त अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वान अरिष्ट नेमी भृगु अंगिराश्च, फिर उसके बाद कहते हैं पराशरोगा दिसुतोथ राम, जिसकी कथा यहां हो रही ना गाधी सूत की, वो भी वहां बैठे है विश्वामित्र जी। पराशरो गाधी सूतो अथ राम, परशुराम जिसका चरित्र सुनाया जा रहा है वो भी वहां श्रवण करने बैठे। ये आश्चर्य ये है, हम भागवत के श्रोताओं को जरा समझे तो ये विशेषता है, ये विलक्षणता है कि उनके द्वारा कहे हुए प्रसंग को सुनने बैठे हैं। जैसे अंतिम वर्णन है, मैत्रेय और वह कवच कुंभ योनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च, नारद जी के लिए तो भगवान संबोधन किए, और नारद जी भी विराजमान है। मैत्रेय जिसका चौथा कंध पूरा उसका विवेचन है, वो भी विराजे हैं सुखदेव जी से पूर्व। तो जिस चरित्र का वर्णन हम वर्तमान सुन रहे हैं, उस गाधी सुतः विश्वामित्र या फिर उस भृगुवंशी, इस श्लोक में ऋषि ऋषि को सुखदेव जी हो चाहे वो सत्यवती हो, ऋषि को भार्गव संबोधन करी है। हे भार्गव भृगुवंश भृगुकुल कीर्ति वर्धक इति, जो भृगुवंशी की कीर्ति को आपने उजागर किया है अपने तप व्रत भक्ति से, भार्गव, और उसी के वंश में, इसी ऋषि के वंश में, इसी ब्रह्मपुत्र भृगु के वंश में ही तो परशुराम आए, जयदेव जी ने इसी को याद किया है दशावतार में। क्षत्रिय रुधिर मये जगत पगत पापम स्नपयसी पयसी समित भवतापम केशव धृत भृगुपति। राम परशुराम संबोधन नहीं, जयदेव जी कह रहे भृगुपति रूप, जिसने क्षत्रियों की खून की नदियां बहा दी। हम जातृ क्षेत्र में ब्रह्मसर पूरा सरोवर नदी उस खून से भर दिया, लेकिन स्नपयसी तत् तत् सरोवरे स्नपयसी स्नानयसी जगत तापम शमयति, शांत का वो पवित्र जल माना जाता है कुरुक्षेत्र का वो जल, जिसमें ग्रहण आदि के समय भीड़ लगती है। स्वयं द्वारकाधीश भी गए थे लीला में वर्णन। वे परशुराम को भृगुपति कहा गया है, उसके पिता के पिता की कथा है भार्गव। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त से इस सोम वंश के पावन चरित्र के अंतर्गत एलादय के वंश में आने वाले उस महाराज गाधी और उसकी पुत्री जमाता की कथा को सुना रहे हैं। भागवत ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपोषक ग्रंथ होने के साथ साथ साहित्य की दृष्टि से भी बहुत ऊंचा है। रस अलंकार की जहां हम बात करें ना, तो उसमें भी भागवत द्वितीय अद्वितीय ग्रंथ है। एक छोटा सा एक उदाहरण दे इसको समझाने के लिए, उसी भागवत के श्लोकों का। सुखदेव जी गा तो रहे हैं इस कथा को, लेकिन अभी हम लोग अभी हम मंदिर में प्रवेश किए तो कुछ भक्त ब्रह्म संहिता पाठ कर रहे थे, तो हम भागवत चैतन चरितामृत मध्य नवम परिच्छेद में मध्य लीला में एक दिन चलाइला प्रभु पयस्वती तीरे स्नान करी गेला आदि केशव मंदिर महाभक्त गण सब वहां पर सब इष्ट गोष्ठी है ब्रह्म संहितार अध्याय वहां पर पढ़ा जा रहा था। महाप्रभु को रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो नृत्य करके नाचने लगे उसको सुनकर सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता समान गोविंदेर महिमा ज्ञानेर परम प्रकाश अल्प अक्षर कही सिद्धांत अपार अल्प अक्षरों में सिद्धांत सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। बड़े यत्न करके महाप्रभु ने इसको लिखवाया उस ब्राह्मणों से कहा लिख हमको चाहिए ये। वहां रुकना पड़ा महाप्रभु को अनुनय भी नहीं करना पड़ा क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस कुछ नहीं था। तो जो भक्त इसका पाठ करते हैं या समझना चाहिए वो महाप्रभु इसको स्पेशल लिखवा के लाए वहीं से इस ग्रंथ को पोथी को। तो ऐसे कुछ भी कोई भी विषय वस्तु घटना प्रसंग हाँ स्थावर जंगम ना देखे महाभागवतों का यही लक्षण। तो उसी प्रकार हम भागवत के श्रोताओं का वैष्णवों का जब हम कोई प्रसंग शब्द स्थिति बताओ कुछ भी देखते हैं तो सीधा मूल तक जाना चाहिए भगवत तत्व तक। जैसे साहित्य की दृष्टि से एक उदाहरण दिया जाए जो मैं बता रहा हूं भागवत उपक्रम में जब सुखदेव जी पधारे और उस महाआसन पर विराजित हुए और सभा देवर्षियों की सुत जी ने वर्णन गाया है ससमृतस्तत्र महान मही ऐसा ब्रह्मर्षि देवर राजर्षि देवर्षि संघ है उस ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सभी विराजमान थे। व्यरोतालम भगवान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरे परीत कैसा लग रहा था वो दृश्य सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और सारे ऋषि मुनि समृत स्तत्र विराजमान है चरणों में आवृत मंडलाकार कैसा दृश्य था व्यरोच तालम यथा इंदु जैसे अंतरिक्ष में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होता है और ग्रह वृक्ष तारा नक्षत्रों के बीच ताराओं के बीच जैसे चंद्रमा शोभित होता है विशेषण रोचते इति व्यरोचतम अति शोभायमान लग रहे थे। तो हमको दृश्य समझ में आता है कि हमने देखा है कभी कभी उस अंतरिक्ष के इस दृश्य को कि ताराओं के नभ मंडल में चंद्र प्रकाशित एक अद्भुत शोभा है। लेकिन देखिए वैष्णव आचार्यों की सरस्वती बुद्धि का कमाल क्या वर्णन करते हैं कि ठीक है तारा नभ मंडल में जैसे ग्रह शुकादय शुक्रादि ग्रह है और नक्षत्र अश्विनी रोहिणी सब उनके बीच चंद्रमा उसके राजा है इंदु या राकापति दशपति उसको कहते ही है चंद्रमा को। तो दृश्य मन को हरता है सुख देता है और कई कवियों ने क्या क्या लिखा है उसके ऊपर। ऐसे हम भागवत में महाभारत में विष्णु पितामह राज सूर्य सभा में यही निवेदन करते हैं प्रथम पूजा किसकी होगी तो भीष्म जी ने कहा कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा तारा के बीच में ये द्वारिकाधीश चंद्र की तरह चमक रहे और पूछ रहे हो किसकी होगी। भक्त लोग भी गाते हैं सब देवर्ण में जैसे तारों में चंदा नटवर नागर नंदा। लेकिन यहां पर भी बताया जा रहा है कि ताराओं के बीच जैसे चंद्रमा शोभित हो ऐसे ही उस शुक्रताल गंगा तट पर ऋषि मुनियों की सभा में महर्षि कवि कुल चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज शोभित हो रहे हैं। तब हमारे वैष्णव लिखते हैं कि ये दृश्य सादृश्य है लेकिन गुणवत्ता के अंतर्गत बहुत इससे अधिक है। क्या गुणवत्ता है वो चंद्र तो प्राकृत है और जिसको जिस शुक को चंद्र उपमा दी जा रही है वो तो सुखदेव जी का शरीर तो प्राकृत नहीं है ना तो उनकी बुद्धि प्राकृत है। अकुंठ में तो सब भागवत में उसको लिखा है सुखदेव जी को आगमन के समय चंद्र देह की दृष्टि से बुद्धि की दृष्टि से वो सुसंस्कृत पुरुष है सुखदेव जी। और दूसरा बी पर विचार करें तो चंद्र प्रतिक्षण शयता को प्राप्त है उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है और सुखदेव जी का तेज या उसका ज्ञान अक्षय है। और एक विचार करें तो चंद्र तो अपने किरणों से वनस्पतियों को रस पोषित करता है, सोमो भूत्वा रसात्मकम, लेकिन शुक मुखात विद से निकली हुई ये भागवत गाथा हरि कथा रस अमृत, उस प्राकृत रस की तरह नहीं है जो चंद्र वनस्पतियों को पोषण करके जीव सृष्टि देता है, प्रेम भक्ति देता है। और ये चंद्र की किरणें ग्रीष्म सूर्य के तापित जीवों को, मान लीजिए शरीर को समित करे, ठंडक दे, लेकिन अंतर आत्मा जो कामाग्नि क्रोधाग्नि अविद्या है उसको तो नष्ट नहीं कर सकती। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जो की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय, उसको तो शमित नहीं कर सकती। लेकिन शुक मुखार बिंद से निकला हुआ यह रस अमृत द्रव, निगम कल्पत्र में यह शब्द है अमृत द्रव जो निकल रहा है वो वैष्णव के हृदय के अंदर अतरंग रस प्रदान करता है, प्रेम रस, और ऊपर से अंतर रस भी प्रदान करता है, वो तो ये बाह्य रस देता है। और जहां तक चंद्रमा उदित होता है तो दृश्य को आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा की किरण और शोभा से ताराओं का तेज कम हो जाता है, उनकी शोभा भी कम हो जाती है। लेकिन यहां तो सुखदेव जी की उपस्थिति से सबका तेज ज्ञान भक्ति बढ़ रहा है। व्यरोचित अपनी उपस्थिति से वो दूसरे को फीका नहीं कर रहे है, अपनी शोभा एक अद्वितीय अलौकिक है, लेकिन उसकी उपस्थिति से अन्य महर्षि देवर्षियों का भी सम्मान, प्रेम आदर भक्ति ज्ञान सब कुछ बढ़ा रहे। तो अब देखिए बाहर से केवल दृश्य सादृश्य की बात करें और अंदर से इस तत्व को समझे, बहुत अंतर है। व्यरोचितालम भगवान यथेन्दु, तब साहित्य की बात हो रही है कि भागवत में ऐसे दिव्य पवित्र शब्द है कि जिसका श्रवण कीर्तन करने पर हमारी वाणी भी शुद्ध होगी और हमें ऐसे पवित्र दिव्य शब्द मिलेंगे। नहीं तो फिर साधारण लोक में जो बोले जाते हैं यही निरर्थक अनर्थक शब्दों को ही घुमाना पड़ेगा ना। इसीलिए समझना चाहिए अनुदिनम निषेव्यमाण, जड़ भरत जी कहा यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातम निषेव्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। यत्र जहां पर उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रकट होगा तो ग्राम्य कथा पर तो कुहाड़ा लगेगा सीधा, सत्संग छाड़ी कैनो असत्य विलास ते कारणे लागिल तार कर्म बंध फांस, नरोत्तम दास जी ने लिखा। लेकिन सत्संग करने पर असत्संग निकल जाएगा तुरंत, कथा चालू होने पर ग्राम्य कथा बंद हो जाती है अपने आप अनायास। इसीलिए अनुदिनम निषेव्यमाण मुमुक्षो अपि मोक्ष वांछा वाले भी उनकी मति भी सती वासुदेव वसुदेव नंदन में सती कर देती है कथा, असती को सती बना देती। देखिए भागवत का सार व्यास जी ने प्रारंभ में लिखा है, अन्य सारे जो भी धर्म कपट को भी त्यागा गया है, यत्र प्रोजिक्त कैतव, कैतव को प्रकृष्ट रूप से यहां से निकाला गया है इस ग्रंथ में। और कैतव क्या है, कपट क्या है जीव के लिए, महाप्रभु के वाणी है चैतन्य चरितामृत, कैतव कहिए आत्म वंचना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति के अलावा इतर जो भी कामना है वो जीव के लिए कैतव है। और तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, और उसमें भी जो ये मोक्ष वांछा है वो तो कपटों में महाकपट महाप्रधान लिख दिया रूपघोष ने, भक्ति रसामृत सिंह में पिचासी कह दिया है मुक्ति को, तो वहां पर भुक्ति मुक्ति पिचासी। लेकिन यह भागवत कथा मोक्ष इच्छताम अपि, मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षा नाम अपि, मुमुक्षाओं को भी उसकी मति को भी सती कर देती है वसुदेव नंदन की कथा, उसके भक्तों के चरित्र में यह शक्ति है। और एक सार बात बताए ना वैष्णव, जो भी ज्ञान हो कुछ भी हो कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत नहीं है वो, अभी निरर्थक नहीं अनर्थक भी है समझ लीजिए, कुछ जीव के लिए महाकाम नहीं लाभ नहीं करेगा। और इसको नारद जी ने कहा है, हमारी वाणी हमारे शब्द नहीं है, व्यास भगवान को बद्री का आश्रम में भागवत में 1.5.12 यही कहा। नैष्कर्पी अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजनम अपि विश्वनाथ जी लिखते हैं कि अजन्म उपाधि अविद्या तद रहितम तद निरंजनम। राग देशादि शून्य ज्ञानम उपाधि अविद्या रहितम ज्ञानम निरंजनम ज्ञानम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। अगर अच्युत भगवत भक्ति हीन है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो शोभा नहीं देता। मन्य तो दर्शनम खिलम, वो अधूरा है, नारद जी के वचन है। तो अगर कृष्ण भक्ति अंतर्गत नहीं है तो वो ज्ञान भी बोझा है, भार है। भगवान के वचन है पुराणों में, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेतान तो चंदनस्य। गदा चंद के बोझ को लेके जाता है, भार का पता है लेकिन चंदन का मूल्य क्या है इसे नहीं पता, ना उसकी सुगंध से कुछ उसको लेना देना। तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरबह वहंती। मेरी भक्ति के इतर है तो गधे की तरह उठा रहा है ज्ञान का बोझ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है महाप्रभु की इस परंपरा में, ये जो उत्कृष्ट वस्तु, ये हरि नाम, यह हरि कथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु, इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। आ ब्रह्म स्तबक पर्यंत, ब्रह्म चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, या फिर इस पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, आ ब्रह्म स्तब पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्य सत्यम पुनः सत्यम श्री हरेर नाम एव केवलम। सत्य कोई वस्तु है तो वो हरि नाम है, वो हरि कथा है, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए सब मायामयम जगत। इसीलिए सत्संग या सतशास्त्र या उस साधु की संगति इस्कान पूरे विश्व में आज मानव समाज को दे रहा है, कितना बड़ा उपकार या सेवा कर रहा है, इसको आप समझ। ईशानो कथा, स्वयं भगवान भक्त चरित्र को सुनते हैं। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं जिसको सुनने पढ़ने पर हमें फिर रोना नहीं पड़ेगा। महाप्रभु महान पुरुषों के जो उद्गार है ना शास्त्रों में, और उनके जो अनुभव है, उनके जो रियलाइजेशन साक्षात्कार है, उसको हमें सुनने से समझ में आएगा। जैसे हम सुनते ध्रुव चरित्र को और वो प्रसिद्ध श्लोक है, काचा विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो काच के लिए, मेरे रत्न मिला लेकिन मैं काच के लिए कर रहा था। इसी को इसमें भी लिखा है इस हरे नाम अष्टकम में कि अहो दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यतः। कितने दुख की बात है, महादुख की बात है, दुखतरम दुखतम की बात है। क्या बात है, काचाय विस्मृत्यपि रत्नम। मैं इस हरिनाम को छोड़कर, हरिनाम एव केवलम, और इसको बटोर रहा, इसी को पीछे लगा हुआ हूं, कर लूंगा बाद में, ये कहना ही पड़ता है विवेकी पुरुष के लिए। क्यों, निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। कौन सा श्वास कब बंद हो जाए उसका आप विश्वास नहीं कर सकते। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या श्रीहर नामेव केवल। इसीलिए प्रत्येक क्षण कीर्तनीय सदा हरि का भाव है। क्यों कहा जा रहा है ये, इसको सत्संग के अंतर्गत, कथा के अंतर्गत, वैष्णव चरित्रों के अंतर्गत कुछ सुनते हैं तब हमारा उत्साह भी होता है। हाँ, और साथ साथ में भगवत कृपा वैष्णव कृपा का एहसास भी होता है, जगत की अनित्यता नश्वरता का भी बोध होता है। हाँ, लेकिन विशेष रूप में हमारे अहंकार का भी शमन होता है, हमारे भीतर की जो कामाग्नि है क्रोधाग्नि है उस पर भी भागवत कथा की वर्षा उसे शांत कर देती है साधक को। इसीलिए शायद सार कहा जा रहा है नित्यम भागवत सेवया, करना है इसी को करना है, सुनते हुए सुने हुए को भी सुनना है विवेकी पुरुष के लिए। यही भागवत का प्रारंभ है। प्रसंग के अंतर्गत चरित्र आप इस नवम स्कंद के ईशानु कथा के अंतर्गत जिसकी कथा वर्तमान हो रही है उसको हम सुन रहे हैं। शिक्षा क्या है, सार संदेश भार्गव भृगुवंशी ऋषि जी जो कितने महान है वो तो हम सुन ही चुके कि वरुण जैसे देवता उनके मित्र है, तपोबल से और मंत्र बल के बड़े ज्ञाता हैं, और वे ऋषि कहकर गए तो सत्यवती अपनी माता के वचनों से उस चरु को तो दे दी माता को। एक रूप से एक विचार किया जाए तो ठीक है, उसने पुत्री धर्म निभाया कि माँ की आज्ञा का, मातो आज्ञा पितो आज्ञा गुरु आज्ञा गरी ऐसी वेद कहता है, तो निभाया एक कहा जाए एक रूप में, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो ज्यादा दया दिखा दी, इतना नहीं करना चाहिए। कुछ विवेकी पुरुष ये भी व्याख्या करे, वो भी अपने सही है, कुछ हिसाब से शास्त्र से कोई भी बात प्रमाणित की जा सकती है अपने अपने स्थान पर पात्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र भी तो है ना, अनंत शास्त्रम किल, एक शास्त्र एक अरण्य है भाई, नीति है कई कई, लेकिन अर्थ शास्त्र से शास्त्र की महिमा विचार करें हम, तब तो बात यही है ना कि विवाह होने के पश्चात स्त्री के लिए पति की आज्ञा का पालन करना ये अधिक महत्वपूर्ण है माता की आज्ञा के पालन से। दैट्स द पॉइंट, ये विचारना है। और माता की आज्ञा भी सही अगर माता हो तो यह होनी चाहिए कि कहे पुत्री को कि पति की आज्ञा का पालन करना, राइट? सही माता होगी तो यही विवेचन देगी कि बेटी सहन करो। और हम देखते हैं रामायण में सीता जी को जब विदा किया जा रहा था तो जनक महाराज की पत्नी सुनेना जी ने क्या, सासु की ससुर की गुरु की पूजा करना, पति रुख लागे आयस अनुसार ही, पति के मन को समझ के उनकी इच्छा को पूर्ण करना बेटी, कहना न पड़े, बेस्ट शिष्य या बेस्ट पत्नी को आदेश देने के बाद करे वो सेकेंडरी है। हमारे रूप गोस्वामी प्रणम्य है, क्यों, मनोभिष्टम, मन को पहले से जान लिया कि महाप्रभु क्या चाहते हैं, आदेश देने पर तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो समझना है तुमको कि हमारे क्या मूड है, क्या उद्देश्य, क्या आज्ञा है, और उसको कर देना विनम्रता से, बुद्धिमता से। पार्वती को विदा किया जा रहा था शिव जी के विवाह अंतर्गत, तब भी तो यही कहा, नारी धर्म पति देव न दूजा, स्त्री के लिए पति के अलावा कोई देव भी दूसरा नहीं होता। शंकर जी के चरणों की सेवा करना, ये उनको सिखाने वाली बात नहीं थी पार्वती या सीता को, लेकिन एक माता का धर्म निभाया गया वहां पर। तब यहां पर हम विचार करें तो एक विचार ये दे सकते हैं कि भगवत इच्छा हो सकती है परशुराम जन्म अंतर्गत, चलो आचार्यों ने लिखा नहीं है, ओके हो सकता है, लेकिन शिक्षात्मक बात हम साधकों के लिए तो यही हो जाएगी ना कि नहीं नहीं, एक तो पति आज्ञा मातु आज्ञा में पति आज्ञा श्रेष्ठ हो जाएगी पत्नी धर्म के अनुसार, अब वो बेटी नहीं रही पत्नी रही इसलिए, और इन दोनों के ऊपर भी विचार करें तो धर्म श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि आज्ञा के पहले, क्योंकि भगवत आज्ञा वो उससे भी गरीय सी हो, धर्म तो साक्षात हो जाए, उससे फिर वेद भी नीचे बैठ जाते, नीति भी नीचे रह जाती। लेकिन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक बात यही है कि सत्यवती की माता का नाम नहीं आ गया यहाँ पर, मैं देख रहा था पूरे अध्याय को, टीका को भी मैं देखा, ये सत्यवती की माँ जो ये चरु बदल नहीं, उसका नाम क्या है, सूत जी ने वर्णन नहीं किया, ना कोई आचार्य ने किया, लगता है जरूरत ही नहीं होगी इसी वर्णन करने का, छोड़ो सत्यवती का नाम दिया गया, आगे चलकर वो कौशिकी नदी बनेगी और परशुराम के वंश का चरित्र, तो सर इनका नाम पता नहीं दिया, नहीं सुध जी ने भी नहीं दिया, शुभ जी ने भी नहीं दिया, ना कोई अन्य आचार्य ने दिया पुराणों में भी। जैसे जमदग्नि की पत्नी रेणुका परशुराम की माता का नाम मिलता है हमको शास्त्र में, इश्वाकु कुले रेणु जात, इश्वाकु के कुल में एक रेणु नाम के राजा हुए, तत्सुता रेणुका स्मृता, हरिवंश पुराण में लिखा कि उसके जमदग्नि से उनका विवाह हुआ। लेकिन गाधी का विवाह जिससे हुआ उसका नाम नहीं दिया जा रहा, जो भी कारण हो या पता न हो जो भी हम ले। लेकिन विचारणीय बात जो यहां पर कह रहे हैं कि भार्गव जी ने कह दिया कि तुमने ये गलती किया है, कष्टम जुगुप्सितम श्रीधर श्रीधरी, कि ये तुमने खराब बुरा काम किया है, निंदनीय काम किया है, तुमको हम कह के गए थे कि चलो तुम्हारे लिए माता के लिए क्यों बदल, तो ये ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया होगा क्या, ते पुत्र दंडधर घोर, तुम्हारा पुत्र जो है ना वो घोर भयानक होगा, और दंडधर क्षत्रियों को छोड़ेगा नहीं, अति क्रोधी हो जाएगा, और त्रेभाता और तुम्हारा जो पी है ना उससे जन्म लेने वाला तुम्हारा भाई होगा ब्रह्मवित्तमा, वो तो ब्रह्मवेता हो जाएगा। अब देखिए ब्रह्मवेता ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के लिए ये संज्ञा अब लागू होती है, तप व्रत करके उन्हें प्राप्त भी किया है। हम पुराणों में बड़ी एक सुंदर कथा मिलती है हमको कि वशिष्ठ आश्रम में जब विश्वामित्र गए, जब वे राजा थे गाधी के पुत्र, हाँ, और यहां पर तो ऋषि का वरदान और यज्ञ का फल और मंत्र का प्रभाव वो होना ही था, वो क्षत्रिय कुल में आए गाधी लेकिन हो जाएंगे ब्राह्मण ब्रह्मवेता ब्रह्मर्षि, और वो कैसे हो गए वो क्या कारण है चरित्र में, तो एक बड़ी प्रेरणादायक बात है उसमें भी। क्या प्रेरणादायक है, वो गए और स्वागत हुआ भव्य, विश्वामित्र की जो गाय थी सॉरी वशिष्ठ जी की जो गाय कामधेनु नंदिनी, उसके शरीर से क्या क्या व्यंजन निकले और क्या क्या वस्तुएं निकली कि जो राजा विश्वामित्र कई हजार सैनिकों के साथ आए थे उनकी भव्यता से स्वागत सत्कार हुई, और इसको देखकर विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित रह गए कि आप ऋषि होकर इतना भव्य ऐश्वर्य कैसे हो गया। देखा जा रहा है कि सब निकल रहा गाय से, देखो गाय का कम उनसे ही निकल रहा, अब लोभ बढ़ गया, ये हमको चाहिए, ये तो राजभवन में शोभा देगी। इसी तरह का दोहराया गया है इसी में परशुराम और क्या नाम अर्जुन और कार्तवीर, ये भी गाय को उठाने जा रहे हैं जाएंगे और परशुराम जी उसी को उठा लेंगे पूर्ण तो सबको। और फिर उसी विश्वामित्र के ब्रह्म बल से सॉरी वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल से गाय से अनंत सैनिक निकले और विश्वामित्र के सारे सैनिक मानते अस्त्र शस्त्र ही कर दिया। तब विश्वामित्र ने देखा कि बाप रे, हम तो वहम में थे कि क्षत्रिय और वीर और ये अस्त्र और शस्त्र, लेकिन धिक बलम क्षत्रियम बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, हमने देख लिया कि ये क्षत्रियों में क्या बल है, बल तो है ब्रह्मर्षियों में मंत्रों में तप में, अब तो हम ब्रह्मर्षि बनेंगे। क्योंकि उसको मुंह की खानी पड़ी, इसको मुहावरा है इसका अर्थ, उसको इतना क्योंकि मरणादि रिच्यते भगवत गीता है, अब कीर्ति जो है वो सम्मान मरण से भी दुष्कर है ना, संभावित से क्या कीर्ति मरणादि रिच्यते भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते, बड़ा ग्लानी फेल हुआ इसलिए उसने अभी तपों के लिए प्रयास किया। और वो तो विश्वामित्र का बड़ा लंबा सुंदर चरित्र है, रामलीला में भी उनका बड़ा अच्छा पार्ट है, लेकर गए थे राम का संग जनक भवन में, विवाह में भी वो उपस्थित थे और वहां पर भी ये भी उपस्थित थे, आए थे राम जी और कथा में भी दोनों बैठकर सुन रहे हैं यही बात, परशुराम भी बैठे और विश्वामित्र जी भी बैठे, बैठे बैठे सुन ही रहे होंगे, हाँ सर सही कह रहा है, सुन क्या फीलिंग होता होगा, एक तो हमारे लिए एक प्रश्न है कि अपनी कथा अपने सुनते हुए क्या उसको एहसास होता होगा, क्योंकि सुनता रहे श्रोता में वो बैठे, चरित्र तो वहीं पर सुनाया जा रहा है परीक्षित जी को, जो भी हो लेकिन ये भागवत है आश्चर्य है। तो ब्रह्म फिर तप के लिए लग गए ये विश्वामित्र जी, यहां पर कहा जा रहा है ते भाता ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म का वेता होगा तुम्हारा भाई, और ते पुत्रा दंड घोर दंडधर घोर होगा भयानक होगा। इतना सुनते ही सत्यवती तिलमिला गई, और तो वो ऋषि ऋषि की पत्नी थी ना, उसको बुद्धि थी कि मैं ब्राह्मणी हूं और मेरा पुत्र इतना घोर भयानक होगा ये खुश नहीं थी, लेकिन गलती उसी की थी। अब क्या करें? प्रसादिता सत्यवत्या प्रसादिता, पूर्ण रूपेण प्रसन्न किया अपने पति को सत्यवती ने, भार्गव को संबोधन किया, हे आर्य पुरुष, हे भार्गव जी, हाँ आप हमारी गलती को क्षमा करिए। आप विचार करिए, आप भार्गव है अपने कुल पर, हम ब्राह्मण है, ब्रह्म वेता शास्त्र वेद हमारा संपत्ति है, हाँ यजन याजन पठन पाठन ये सब हमारा धर्म है, और आप निवेदन कर रहे हो कि हम मेरा पुत्र घोर होगा, ये मैं नहीं चाहती हूं ऐसा। देखो प्रभुपाद जी ने भी अगले तात्पर्य के इसके पहले तात्पर्य में लिखा है कि पति सहज पत्नी पर स्नेहवान होता है, क्यों? क्योंकि वो सेवा करती है, हम सेवा करने के कारण पति का स्वाभाविक, भगवान भागवत में दुर्वासा को यही कहते हैं, दुर्वासा जब गए वो चक्र की लीला नहीं कोई शरण दे रहा था, सत्पतिम स्त्रियम यथा, मैं अपने भक्तों के द्वारा इसे ऐसे वश में हूं जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को वश में रखती है। भगवान कहते हैं मैं इतना मेरे भक्तों के वश में, क्योंकि सती पतिव्रता होने पर स्नेह देने पर स्नेह प्रकट होता ही है स्वाभाविकतया, और उसमें भी अगर मधुर भाषिणी हो और उसमें भी अगर सेवा रत हो, व्यवहार और वाणी कार्य सिद्धता में बहुत काम आते हैं भाई, ये पूर्व व्यवहार तुम्हारा वर्तमान, हम कहते हैं कि हमारा हम सफल हुए कि निष्फल हुए, उस पर केवल वर्तमान ही आधार नहीं रखता, हमारा भविष्य बोला हुआ वाणी और व्यवहार भी आधार रखता है कुछ मात्र, नहीं तो लोग कहते ना अभी तुम बोल रहा है ठीक है लेकिन तुम्हारा पता है हमको, तुम होते है ना ऐसा, जो नेचुरल है वो नेचुरल है और जो खींचकर लाया गया है उपाधि वो उपाधि है तो स्वभाव में साधुता ये एक अलग बात है, और डर के मारे नियम के बारे रुक जाना ये भी एक अलग बात स्वाभाविक साधुता अलग, नेचुरल अलग है ना, ते गुण साधन ते नहीं होई, तुम ही कृपा पावत कोई कोई, कोई कोई गुरु वैष्णव कृपा से इस गुण को लाभ करता है, ये अलग, ये अपनी बात है ये सत्यवती का गुण था, ऐसा ही गुण हम पढ़ते हैं भागवत में देवहूति माता का। और एक विशेष प्रसंग सादृश्य की बात याद कराए वैष्णवों को कि उस त्रिशेष कंध के 14 अध्याय में जब दीति को पता चला कि तो पुत्र भी दुष्ट की और संध्या वेला में वो कार्य हुआ था, तो कश्यप जी ने निवेदन दे दिया था ऐसा ही कि तुम्हारा पुत्र, दोनों जो पुत्र होंगे वो महाखल होंगे, दुष्ट होंगे। अब दीति ऐसे ही विलाप कर रही थी वहां पर भी, मामे गर्भम इवम ब्रह्मन् भवताम ऋषभो विदाताम, कि उसने कहा हे ब्रह्मर्षि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे गर्भ ऐसे दुष्ट खल हो, विनय अनुनय करने लगी। वहां पर थोड़ा प्रसंग अलग है, लेकिन जो दीति और सत्यवती के वचन अंतर्गत पुत्र वो नहीं चाहती है भयानक क्रोधी, ये सादृश्य है। और वहां पर भी बड़े अमृतमय वचन है कश्यप भगवान के, 3:14-43, ठीक है देवी तुम इतना क्षमा मांग रही हो, गलती होने करना ये बड़ी बात नहीं है, देवतरते ऋषि भी करते, लेकिन गलती मान लेना और उसके लिए क्षमा मांग के फिर दोबारा नहीं करने का संकल्प लेना, उसके चरणों में कोटि प्रणाम करना चाहिए। हम देखते इतिहास, किस राजा से गलती नहीं हुई, किस ऋषि से नहीं हुई, किस देवता ने गलती नहीं किया, फिर भी वे देवता है, फिर भी वो ऋषि है, क्योंकि वो मानते हैं और फिर पश्चाताप भी करते हैं और नहीं करने, ये साधुता है। आजकल के लोग तो मेरी है ही नहीं, तुम बोलोगे तो वांछा कल्प तो कर लेता हूं, लेकिन गलती तो उसी की है वांछा कल्प तो कसरत कर लेंगे, एक आसन और बढ़ा देंगे जो रामदेव के लिस्ट में नहीं है, वो वाला आसन कर देते पंचांग हम भी, लेकिन हृदय के जो भावना है उसमें तो टाइम लग जाएगा ना, कृपा चाहिए। देखिए यहां पर पुत्रताम पुत्रस्याम ते पुत्र भवती एक सताम मतः, कश्यप जी ने कहा कि देवी पुत्रस्याम ते पुत्र, तुम्हारे जो पुत्र होंगे ना उसका जो पुत्र होगा ना भवती होगा जो सताम मतः, वो वैष्णव में माना जाएगा। गायंती यद यश शुद्धम भगवत यश सा समह, भगवान के यश के साथ उसका यश गाया जाएगा, किसका? तुम्हारे पुत्र के हिरण्यकशिपु के। प्रहलाद का पुत्र ते पुत्र, तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र है ना वो वैष्णव माना होगा सांत्वना भी कश्यप भगवान ने। कुछ ऐसी सांत्वना सांत्वना यहां पर है कि ये मंत्र तो फैल जाएगा नहीं लेकिन एक पीढ़ी पीछे डाल सकता हूं। अथ इसमें शब्द है अथ पुत्रांतरम, विश्वनाथ जी लिखते अथ, अथ मतलब इसके बाद पुत्रांतरम, तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है तर ही उसके भवे जो पौत्र, जो पौत्र भवे पुत्र का जो पुत्र पौत्र भवे स वो आगे वाले गुणों से योग्य हो जाए, क्योंकि एवं मां भूत सत्यवती कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भार्गव हे आर्यपुत्र हे भृगुवंशी वैश्य अपने पति को निवे स्वामी इतनी मां भूत ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? मेरा पुत्र घोर नहीं होना चाहिए, दंडधर नहीं होना चाहिए। तर ही तब अथ पुत्रांतरम उसके बाद वाला ते पौत्र तुम्हारा जो पौत्र है वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा अर्थात जमदग्नि शांतो भवत्, जमदग्नि जो पुत्र होंगे वो शांत होंगे, उसमें वो गुण। एक पीढ़ी ऋषि जी ने जैसे यहां पर भी कश्यप भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है उस पुत्र का पुत्र महावैष्णव भक्त होगा, यहां पर भी भार्गव जी ऋषि मुनि कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र उस गुणों से युक्त होगा जो मैंने जो जो चरु का मंत्र बल काम करेगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र शांत होगा जमदग्नि जिसका नाम है। और उसका चरित्र विस्तार से इसके बाद वाले अध्याय में आएगा, जमदग्नि प्रेणुका परशुराम जी का विस्तार से चरित्र सुखदेव जी कहेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो इस तात्पर्य में कहना है कि ऋषि कुपित थे, जब सुना कि चरु बदल दिया खा गया तो नेचुरल क्रोध होना था क्योंकि एक काम ही अलग कर दिया था, लेकिन सत्यवती की प्रार्थना पर ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रार्थना में भी बहुत बल होता है। देखो हम भी पति पत्नी की बात से जरा हट जाए और उसी को गुरु शिष्य की बात पर लाए तो गुरु शिष्य पर संबंध के नाते और अपने वैष्णव स्वभाव के नाते स्नेहवान होते हैं और शिष्य गुणों के अंतर्गत होने के कारण अपने कर्मानु प्रारब्ध स्वभाव के कारण कुछ ना कुछ दोष या गलती अपराध तो करेगा ही करेगा, ये है। लेकिन अगर वो आज्ञाकारी है सेवारत है तो ऐसे गलती किए हुए अपराध करने वाले शिष्य पर भी अपने अधम जनार बंधु होने के कारण वैष्णव स्वभाव होने के कारण वो क्षमा करके कृपा दान देते हैं। लेकिन वो आज्ञाकारी हो या सेवारत हो तब ना, जैसे पत्नी नेचुरली गलती की थी लेकिन फिर भी वो क्षमा मांग रही है और मतलब मधुर भाषा से बोल रही है। स्त्री का ये सबसे बड़ा गुण है मधुर वाणी, किसी का भी स्त्री का क्या लेकिन अगर वो नहीं है तो सारे जो गुण है ना उसमें 80% गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं अगर मधुर भाषा न हो तो, 80-90% दोष बन जाते हैं। आप सही कह रहे हैं लेकिन मानने वाला कौन है तुम्हारा? तुमसे चाहेगा ही नहीं, तुमको आदर देगा नहीं तब तो करेगा कैसे? और हम देखते हैं इस संसार का कलयुग का नाटक, इन मधुर वाचा का प्रयोग करके तो गलत भी लोगों के दिमाग में घुसा रहे हैं ये लोग, पाखंड भी तो घुसा रहे कि नहीं? ये पाखंड धर्म वाले क्या कर रहे हैं? बाह्य आचरण व्यवहार इतना सुंदर मधुर करके लोगों को फंसा रहे कर ही रहे। तो वो हमें देना है सत्य लेकिन टेक्निक तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मधुर भाषा के साथ साथ अभी सच्चे गुरु सच्चे वैष्णव वो तो देखते भी है, सच्चे पति को पता है अगर वो आज्ञाकारी नहीं है सेवारत नहीं है अपने अहंकार में ही मस्त है तो मधुर भाषा काम में आएगी नहीं, वो केवल बाह्य हो जाएगा लेकिन अंतर से कभी उसको हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलेगा साधु का गुरु का। उसकी प्राप्ति के लिए ये वाणी और व्यवहार सत होना चाहिए, सत माने शास्त्रानुसार साधु मतः अनुसार होना चाहिए, तब ये प्राथना करने पर मधुर वाणी होने पर और सेवारत आज्ञाकारी होने पर हम गलती अपराध करते हुए भी बचने की या आगे बढ़ने की आशा रख सकते हैं गुरुजनों से या पत्नी पति से। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो कुपित थे तथापि मधुर वाणी और प्रार्थना को सुनकर और यहाँ पर रिजल्ट सुख जी तो दे दिया कि प्रसादी तो प्रसन्न कर लिया, भार्गव जी को प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न करके उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि ठीक है उसके बाद वाला तुम्हारा जो पौत्र होगा वो ऐसा होगा, पुत्र तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। तो ये कथा से आप वैष्णव, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध और पवित्र प्रसंग है, आप कभी सुने पढ़े हैं, फिर भी दास ने कुछ निवेदन किया, निश्चित त्रुटि गलतियां होती है जीव से, आप सारग्राही वैष्णव है, स्वयं पढ़िए प्रभुपाद के ग्रंथ और शुद्ध साधुओं से सुनिए, क्योंकि ये रस ग्रंथ है, इसमें जो भाव है वो अनंत है, और इसका सुनना पढ़ना हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को निर्मल करेगा, हमारे बुद्धि को पवित्र करेगा, इससे श्रेष्ठ और कोई काम नहीं है। हम वैष्णव पढ़े हैं, सुने हैं, वैष्णवानाम धनम, भागवत क्या है, वैष्णवों का संपत्ति है, धन है, इसको इकट्ठा करना, इसको संभालना है, बाकी सब तो माया और वैभव है भक्ति विनोद के ठाकुर के शब्दों में। तो हम भक्तों को चाहिए कि आज्ञाकारी होकर परंपरा वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में उनकी आज्ञा और उनकी प्रसन्नता के अनुसार सेवा करें, साधना करें, और हमेशा दैन्य में विनम्रता में यही वांछा, यही कामना करते रहना चाहिए कि वैष्णव के संग में हरि कथा मिले और गुरुजन वैष्णव की सेवा में मन वचन काया लगा रहे, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं, शास्त्रों का निचोड़ निचोड़ यही है, तो इसमें लगे रहना है। तो मैं कोई ज्यादा क्या बताऊं, आप सभी विद्वान हैं, सुनते ही पढ़ते हैं, तो मैं यहीं पर समय के अनुसार 9 बजा है तो हम वाणी को विराम देते हैं, और कुछ इसमें गलत बोला या ठीक नहीं बोल पाया तो आप यहाँ पर सीनियर भक्त हैं, परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु जी विराजमान हैं, हम लोग कुछ जो भी बोलते हैं, छोटे छोटे थे तब उन्हीं ने हमको पकड़ के इसमें लगाया है, परम पूज्य कमलोचन प्रभु का भी बड़ा सहयोग है जीवन में, बार बार हमारे घर प्रोग्राम उत्साह आनंद और भक्ति में लगाने में बहुत भक्तों का सहयोग है, और उनसे ही कुछ सुने पढ़े है सीखे है, को कुछ बोल के अपने आप को पवित्र करने का प्रयास होता है, लेकिन फिर भी इन लोग की महानता के बैठते हैं सुनते हैं, यही वैष्णवता है, ये भी सीखना है, लेकिन फिर भी श्लोक में या कुछ और आप जानते हो तो निवेदन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की कोई है कुछ कहना है, प्रश्न बताइए, गिरधारी जी के दास, गिरधारी दास तो वो आगे का श्लोक ऐसा बोलता है कि माता ये सत्यवती अपने आप को कौशिकी नदी जल के रूप में नियुक्त कर ली, विद्यमान कर ली। अब इसके पीछे क्या कारण है देखना पड़ेगा आचार्य की, का अगर कुछ लिखा है तो प्रभुपाद जी ने भी, मैं पीछे का बिल्कुल नहीं देखा कि क्या वो, मैं केवल जिस श्लोक पर था और उसके पूर्व श्लोक को देखा, इसके पीछे वाला उनको पता नहीं, वो सुखदेव जी ने यही लिखा है कि वो हो गई, अब क्यों हो गई वो पढ़ना पड़ेगा ग्रंथ, उसमें कुछ होगा तो हाँ प्रभुपाद जी भी नहीं दिए, हाँ तो जो भी हो ये तो हम नहीं जानते, और कुछ, हाँ प्रभु जी,
क्या करते हैं तो स्वामी की आज्ञा करनी होती है,
हाँ,
लेकिन कलयुग इतना दूषित हो गया है, इसमें न तो पत्नी अपनी स्वामियों की आज्ञा में रहती है और न तो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं,
हाँ।
देखा गया है, देखा जाता है, सुंदर से सुंदर विष्णु, अच्छा विष्णु भी ये सोचता है गुरु मेरे अनुसार चलना चाहिए, एक अनुप का दोष है। लेकिन इतने सारे दोषों में भी जब तक व्यक्ति का बुद्धि बदलेगा नहीं तब तक तो भक्ति की संपदा दूर चला होता रहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है इस बीच में, इसको कैसे बदला जाए, इस बुद्धि को कैसे बदला जाए?
आप तो गुरु आज्ञा के मूर्तिमान स्वरूप है, हमने तो आपके देखा भी है, आपकी जो इच्छा थी हम जानते हैं और महाराज की आज्ञा पर आपने बदल दिया। प्रभु जी की इच्छा थी वृंदावन रहना, महाराज की आज्ञा पर नहीं रहे, करते हैं। प्रभु जी के साथ हम बहुत रहे हैं तो उनकी तो गुरु आज्ञा पर उनका जीवन ही है। लेकिन प्रश्न भी वर्तमान समय में विचारणीय है, ऐसा देखा जाता है हो रहा, तो क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे बुद्धि शरणागत हो जाए, सती हो जाए विष्णु चरण में और उसके प्रेमी प्रतिनिधि गुरु चरण में। तो दो ऐसे तो आप भी जानते हैं और बहुत कुछ इस पर विचार करना चाहिए, शास्त्र का मनन करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन वर्तमान जो भी याद आ रहा है, स्फुरित हो रहा है, दो बातें हम कहेंगे इस पर। ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरित्र सुनना चाहिए जो गुरु आज्ञा में पूर्णतः समर्पित होकर अपना जीवन बिता है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी, हम देखते हैं उनकी आज्ञा, भगवान भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा ही उसका जीवन, या हमारे सभी परंपरा के आचार्य, उनका चरित्र बार बार सुनने पर बुद्धि में, हमारी जो जड़ बुद्धि है उसमें एक छेद होगा, क्या कि मैं, हम जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ जी के कितने समर्पित, रामायण में ऐसे, भागवत में और वर्तमान आचार्य जो भी है, सब में हम इसको सुनने पर एक प्रभाव होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा कि हम, क्योंकि वो वैष्णव के चरित्र शुद्ध है और वो गुरु आज्ञा में समर्पित है परंपरा के अंतर्गत, और उनके चरित्र में वो स्थिति है जो हमारी बुद्धि को कुछ ना कुछ असर करेगी। एक 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 बात। दूसरी, ये तो सुनने की बात हुई, लेकिन वर्तमान जो भी हम संग करते हैं, जिस भक्तों से हम, जिसके साथ रहते हैं, संग करते हैं, वो भी ऐसे भक्तों का करना चाहिए, जैसे आप ही कल बता रहे थे कि जो हमारी दैवी प्रकृति में स्थित हो, जो शास्त्र के अनुसार साधु हो और शुद्ध हो, सब नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ओके ये भगवान के ये जो कथा के शब्द आ रहे हैं ना, ये भी ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है इसको भेजे में डालने पर बहुत शुद्धता होती है तो एनीवे मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। आप कहोगे वर्तमान ऐसे साधु ऐसे वैष्णव मिलते नहीं 100%, 100% भले न मिले, जितना जो है आज्ञारत है सेवा कार्य, ऐसे भक्तों का संग हमें कुछ ना कुछ उसमें लगाएगा, ये भी एक है प्रैक्टिकली, ये भी है इटरनल उपाय, चेतो दर्पण मानव जन्म, जो हरि नाम हम करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। हम एक बार महाराज जी से ये भी सुने थे और शास्त्र भी प्रमाण करता है कि वैष्णव की सेवा से जो बुद्धि में जो जड़ता जाती है ना, वो किसी अन्य तप व्रत से नहीं जाती, जो शुद्ध उनकी वैष्णव की सेवा, प्रैक्टिकली सेवा, वो भी एक एक आधार रखता है। तो हरि नाम तो अपने आप में है ही है, लेने पर बुद्धि, चेतो दर्पण के अनुसार, या कई सारे श्लोक है जो बुद्धि को शुद्ध करते हैं। लेकिन जो बात हम वर्तमान, हमको याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र सुनेंगे जो शरणागत हो, समर्पित हो, जो भागवत में है, चैतन्य चरितामृत में है, और अभी वर्तमान जितने जितने जो एडवांस हो हमारे वर्तमान समय में इस तरह के साधुता में या शरणागति में, ऐसे भक्तों का संग या उनका संवाद आदान प्रदान, ये भी एक लाभदायक होगा। और अपने आप को बुद्धि में ये घुसाना है कि हम दास है, स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रकृति हमारे वश में नहीं है, हम किंकर है, पतितम माम विश्व में, इसको स्मरण करते रहेंगे साधक, सुनते रहेंगे, तो फिर मैं कैसे प्रभुत्व जमा सकता हूँ? इन जिन आचार्यों, फिर इसकी कृतज्ञता को भी याद किया जाए, प्रभुपाद की, हमारे गुरुजनों की, कि इस नाचीज को, हम एक गटर के कीड़े थे जो विषय भोगों में, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित हमको ला दिया यहां पर, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उनकी आज्ञा के विपरीत कुछ सुनते रहेंगे एकांती हरि भक्ति उत्पाद कर रहा हूं कि अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम कर रहा हूं। ये श्रवण बहुत काम करता है, इसीलिए एक इस बीमारी से निकलने का एक उपाय है कि सदैव शुद्ध भक्तों के संग में कथा को सुनते रहना चाहिए। बोलते बोलते जब सुनना बंद कर देते हैं ना, तब वो भाव आ जाता है, गुरु भाव और फिर अहंकार भाव, फिर अपने गुरु का ही। और ये चालू कहां से होता है ये भी हम सब सुनने पड़े हैं, किसी एक छोटे वैष्णव के अनादर अपराध से ही ये बढ़ते बढ़ते गुरु और अंततः भगवान तक भी जाता है। जैसे आप बता रहे हो कि गुरु की आज्ञा के हम ये चाहते गुरु हमारे अनुसार, इतनी कलयुग की हाँ ये प्रभाव हो गया है, तो इसका कारण भी छोटे से चालू होता है। सबको सम्मान नहीं देते हैं, या अमानी न मान देने को फॉलो नहीं करते, कृष्ण से गिरी, तो इस छोटे छोटे लेते ले बड़ा रूप ले जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखना है कि हम सभी वैष्णव को आदर दे, सम्मान दे, गुण ग्रहण करे। तो ऐसे आप हमसे ज्यादा जानते हो, फिर भी एक फॉर्मालिटी जो आपने पूछा उस अनुसार मैं कुछ बताया, त्रुटि हो तो क्षमा। ओके
और वो स्त्रिया अगर इस किसी जैसे गुरु को घुमाता है, ऐसे पति को घुमाना चाहती है और पति के पास ऐसा कार्य करवा लेती है, उनके लिए क्या उपाय है? कलयुग वहां ज्यादा
कनक कांता सूत्रेशु सकलम वैश्चितम जगत, पूरे जगत को भगवान ने माया ने दो कांता से, कांता मतलब स्त्रिया और कनक, उसे बांध दिया है। तासाम तेषु विरक्त सो द्विभुज परमेश्वर, अगर इससे कोई विरक्त हो तो दो हाथ वाला भगवान ही है। एक व्यक्ति ने लिखा है कोई मुक्त नहीं इनसे, बड़े बड़े योगी मुनि को भी मुनि नाम अपनी सुदुष्ट भागवत कहता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? उपाय प्रभुपाद के अनुसार हम बात करें, उनकी शिक्षा प्रणाली के अनुसार, तो उनको भी महाप्रसाद और कृष्ण सेवा में लगाया जाए। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम अपने जीवन में प्रधानता किसको देंगे? भागवत को, शास्त्र को, और इसको फॉलो करने वाले वैष्णव गुरु को, उसकी बात को नहीं। जब हम उसके हाथ के खिलौना बन जाएंगे ना, बंदर, भागवत में लिखा बड़े बड़े राजा भी स्त्रियों के हाथ के बंदर बन जाते थे और मुकुट लग देते, जीत के आते थे सिकंदर और वहां पर, तो ये नेचुरल है लेकिन स्वाभाविक है कलयुग में। अब उससे बचने का उपाय क्या है? हमें खुद ही समर्थ होना पड़ेगा गुरु शरण में, शास्त्र शरण लेकर और साधना करके, और बुद्धि को शास्त्र और श्रवण से पैनी छिनी तेज रखकर, ज्ञान में रहकर, नहीं तो आसक्ति में हम फंस ही जाएंगे। पढ़ते रहना चाहिए, उपाय यही पर आएगा अंततः। प्रभु जी, जैसे कोई कोई स्त्रियों में आसक्ति है, उनके शरीर में ही माया फोस लेती है, लेकिन याद करना चाहिए शंकराचार्य को, नारी स्तन भर नाभि निवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतद् मास आदि विकारम मन से विचार ये बारम बार, ये क्या है? हाड़ वर्ष का पिछले साल हमारा कोई संबंध नहीं, और अब वो जो बोल रही है वो हमारे भक्ति और हमारी मुक्ति, हमारे भगवत प्राप्ति के अंग में विरुद्ध बात बोल रही है। उसको प्रेम से समझा देना चाहिए, कुशलता पूर्वक, बिना बुद्धिमता, और नहीं समझ रही है तो छोड़ो, छोड़ते दो, क्या कर, हम अपना जीवन भक्ति थोड़ा बिगाड़, क्योंकि आत्मार्थम पृथ्वी त्यजे, विदुर जी ने कहा है कि एक से आते कुलम तेजे, एक के लिए कुल को छोड़ो, कुल से आते ग्राम में से आते कुलम, गांव के लिए कुल को ना? लेकिन अंत तो श्लोक में कहा कि अपने भक्ति के लिए तो पृथ्वी को भी त्याग पड़े, तो त्यागना ही पड़ेगा। त्यागने से अर्थ है कि उसको निकालेंगे नहीं, लेकिन अनादर उसके उपेक्षा उदासीनता तो कर प्राप्त कर ही सकते। बड़ा कठिन प्रश्न है और हम उसमें है नहीं तो उत्तर भी क्या दे, लेकिन बस यही है, प्रयास करेंगे और क्या। आप ज्यादा इसमें आगे हैं हमसे तो आप ही बता दीजिएगा कभी कृपा करके वैष्णव हो तो। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा।